नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई के एफएम गोल्ड प्रसारण सेवा में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम छूलो आसमान में आपसे रूबरू होंगे आशीष वैद, मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष स्टेट और प्रेसिडेंट इंडियन मर्चेंट चैम्बर। इनसे बातचीत कर रहे हैं नजारा टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन, आईबीजी के प्रेसिडेंट फॉर द रिपब्लिक ऑफ माली के ऑनररी काउंसिल विकास मित्रसेन।
हमारे साथ आज हैं आशीष वैद जी, ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ आईएमसी। इसके अलावा और बहुत बातें हैं इनके बारे में, अभी करेंगे। काफ़ी क्लब्स पे हैं ये, बोर्ड्स पे हैं, ट्रस्ट्स पे हैं, सोसाइटीज, एसोसिएशंस, और ये तो इनका साइड चीज़ें हैं। मेन तो इनका बहुत बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस है, बनाते हैं हजारों बिल्डिंग्स। वेलकम आशीष जी।
धन्यवाद विकास जी मुझे इस शो पे बुलाने के लिए।
आपने टाइम निकाला, थैंक यू फ्रॉम माय ऑल इंडिया रेडियो एंड माय सेल्फ।
मेरा सौभाग्य है।
पहले ये बताइए, आपकी अर्ली लाइफ क्या थी? स्कूल, कॉलेज, आप बॉम्बे के हैं, बाहर के हैं?
मैं तो यहीं का हूँ, मैं मुंबई कर हूँ शुरुआत से। मेरा जन्म भी यहाँ हुआ, मेरी पढ़ाई भी यहीं। मैं यहाँ कैंपियन स्कूल में जाता था, उसके बाद में हम सिडनम कॉलेज में पढ़े, फिर हम लॉ कॉलेज में पढ़े, फिर मैंने मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी इधर मुंबई में की। पूरा हम मुंबई कर हूँ।
वेरी गुड, वेरी गुड,
धन्यवाद।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया
कभी कभी जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं तुझे जमीन पे बुलाया कभी कभी मेरे दिल में
तो अभी आपका मेन जो है बिजनेस तो है ही बहुत बड़ा, मेन आपका टाइम कहाँ जाता है? आईएमसी में?
हाँ,
जो आईएमसी के प्रेसिडेंट बनने से तो आपका मेरे ख्याल से एक साल का रहता है।
बिल्कुल,
तो आपका एक साल तो राइट ऑफ हो गया।
देखिए आईएमसी जो है एक बहुत पुरानी संस्था है, ये 1902 में स्थापना हुई थी इसकी, सो इट्स ऑलमोस्ट 112 साल पुरानी, 1907 में हुई थी तो 112 साल पुरानी संस्था है। मुंबई में आपको जैसे मालूम होगा चर्च गेट स्टेशन के सामने है, ये यही एक चेंबर है जहां महात्मा गांधी जी ने कॉमर्स चेंबर जस्टिप ऑनरी मेंबरशिप उन्होंने एक्सेप्ट किया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था 1939 में। हाँ, और आपको आईएमसी के बारे में तो बहुत कुछ मैं बता सकता हूँ, बिकॉज अभी हर प्राइम मिनिस्टर और हर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेंबर में आए हैं टर्म में, और हम लोग बहुत से अच्छे कार्य करते हैं, और सब विदेशी काउंसिल जनरल हो या एम्बेसडर्स हो या उनके ट्रेड डेलीगेशंस सब मुंबई में आते हैं, तो आईएमसी में जरूर आते ही आते हैं। तो और हमारे आउटबाउंड भी डेलीगेशंस होते हैं, प्लस हमारे जो रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट को होती हैं, तो हर टॉपिक पे हम लोग हमारी 32 एक्सपर्ट्स कमेटी, 32 एक्सपर्ट कमेटी, हाँ, और 32 और वो हर विषय पे हम लोग रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट को करते हैं, और मुझे खुशी है कि जो 3-4 बातें हमने यानी लिखी उनकी सुनवाई हुई और एक्सेप्ट हुई और उन पे एक्शन भी हुआ, तो बहुत ही,
तो गवर्नमेंट भी बहुत रिस्पॉन्सिव है
एकदम, बिल्कुल,
स्पेशली बिजनेस के जो चेंबर्स हैं,
बिल्कुल सर,
वो जो रिकमेंड करते हैं दे टेक सीरियस अकाउंट।
बिल्कुल सर।
ये बताइए कि मेंबर्स कितने हैं?
हमारे 2500 मेंबर्स डायरेक्ट है,
okay.
और हमारी 172 एसोसिएट मेंबर्स है, एसोसिएशंस मेंबर है, तो ऐसी हमारी पूरी रीच जो है वो 400,000 मेंबर्स के
अक्रॉस इंडिया,
नो मेनली महाराष्ट्र,
ओके,
है अक्रॉस इंडिया, बट हमारी मेंबरशिप जो है ये 400,000 जो मैं कह रहा हूँ नंबर, वो महाराष्ट्र का है।
मेंबर तो मैं भी हूँ आईएमसी का,
आप आते नहीं सर?
अरे आप बुलाते नहीं, हमको कमिटी में ले लीजिए, हम रेगुलर आ जाएंगे। हमने देखा है कि ना आईएमसी में जितने लिस्ट देखोगे अगर मेंबर प्रेसिडेंट्स की, सबसे बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं।
बिल्कुल सर,
दिस इज कंट्रोल्ड बाय बिजनेस टोटली।
बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे पास लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस हैं मेंबर्स हैं, और हम ऐसे काफी एमएसएमईज भी हैं और काफी प्रोफेशनल्स भी मेंबर्स हैं, और ये बहुत ही, आप आया करिए
जरूर जरूर सर, अभी आगे से अभी आपसे मुलाकात हो गई है
सर, हर रोज 3 कार्यक्रम होते हैं आईएमसी पे।
स्टार्टअप्स में कुछ करते हैं क्या?
हाँ, हमारी एक स्टार्टअप कमेटी भी है, हम उनको प्रोत्साहित करते हैं, गवर्नमेंट महाराष्ट्र के साथ जो स्टार्टअप कमेटी है उसके साथ भी हमारा संबंध है, एंड हम लोग उनको गाइडेंस देते हैं, मेंटरिंग देते हैं, और उनको प्रोत्साहित करते हैं आगे चलने के लिए और यूनिकॉर्न्स बनने के लिए।
गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का कुछ फंड सेटअप करा है स्टार्टअप्स के लिए।
बिल्कुल,
उसमें आपका कोई ये है
नहीं?
आईएमसी जैसे चेंबर्स का?
हाँ, तो वो हमारी स्टार्टअप कमेटीज कुछ रिकमेंडेशन करती है, तो हमारा उनके साथ लिंक है डायरेक्टली मंत्रालय में, उसका हो रहा है, बट अभी इट्स इन द अर्ली स्टेजेस, बट अच्छी
आपके जैसे चेंबर्स,
बिल्कुल,
तो इनको फ्रंट से आपको लीड करना चाहिए।
वही हम कर रहे हैं सर, हमारी कमेटी में आप देखिए हमारी स्किलिंग कमेटी है, स्टार्टअप कमेटी है, सो उसमें सब काफी, डिजिटलाइजेशन कमेटी है, सो काफी प्रोत्साहित करते हैं सब।
मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।
किसी राह भी निकलते, हाँ हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते।
मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम, दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।
ये कहा
कि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।
ओ, तू बदन है, मैं हूं छाया, तू ना हो तो मैं कहां हूं। मुझे प्यार करने वाले तू जहां हम दम किसी राह भी निकलते, हमें मिलना ही था हम दम किसी राह भी निकलते। ये कहां आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते।
मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।
ये कहा
और कुछ आपको आईएमसी के बारे में बोलना है? बिकॉज ये मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है।
इट इज ट्रेमेंडस।
इतना बड़ा मतलब चेंबर पे आप बैठे हैं और ऐसा प्रेसिडेंट।
बिल्कुल।
तो आपको किस कारण से सेलेक्ट करा? या इलेक्ट हुए हैं क्या?
नहीं, हमारे इधर हमारे आईएमसी में इलेक्शन ही होता है एक तरीके से, बट मैं 20 साल से आईएमसी मैनेजिंग कमेटी में हूँ। इनफैक्ट जो इसका यूथ विंग था वो मैंने 2000 में मेरे अंडर में स्टार्ट हुआ था, तो 2 साल में यूथ विंग का चेयरमैन रहा हूँ। उसके बाद में मैं 20 साल से लगातार इस कमेटी का मैनेजिंग कमेटी में रहा हूँ और मुझे इसमें काफी सीखने को मिलता है, एडुकेशन बहुत होती है इसमें, बिकॉज रोज जो अलग अलग विषयों पे प्रेसिडेंट के रूप में हमें पढ़ना पड़ता है ताकि हम अच्छी तरीके से बात कर सके जो सामने हमारे मिनिस्टर्स आते हैं या फॉरेनर्स आते हैं। तो इट्स अ ग्रेट एडुकेशन एकदम, मैं तो बोलता हूँ कोई भी बिजनेस स्कूल से ज्यादा इसका एडुकेशन है।
आप बहुत क्लब्स के, कमिटीज के, सोसाइटीज के, कई जगह आप मतलब है ना लीड भी कर रहे हैं और कमिटीज पे भी है, इसमें मेन क्या है?
ओके, सो मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे कि सेवा का जो रिवॉर्ड है वो ज़्यादा सेवा करना है।
अच्छा।
और मुझे काफ़ी मज़ा आता है ये सब करने में। तो मैं जैसे हमारी स्पोर्ट्स क्लब्स है, तो विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब में हूँ, CCI क्लब में कमिटीज़ में हूँ, फिर रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे का मैं पास्ट प्रेसिडेंट रहा हुआ हूँ। सो और काफ़ी हम लोग सोशल काम करते हैं, इस बहाने हजारों लोगों से मुलाकात भी होती है, दोस्ती भी होती है, संबंध भी बनते हैं, तो इट्स बहुत ही अच्छा महसूस होता है सेवा करने में। सब चीज जहाँ हमारे सोसाइटीज है, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरी ऑफिस है, वो सब कमिटीज में हमेशा मुझे ले ही लेते हैं।
तो मैनेज कैसे करते हैं ये सब?
अपने आप से
आ जाता है।
बिल्कुल सब मैनेज हो जाता है सर।
चैरिटी ट्रस्ट भी चलाते हैं आप? खुद का है या कोई बोर्ड पे?
हाँ, तो एक्चुअली आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, तो मेरे पिताजी ने एक चैरिटी ट्रस्ट कर रखी है मेरे मदर के नाम से। तो एक मुझे बड़ी खुशी होती है आपको बताते हुए, हमने हाल ही में लास्ट ईयर महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर भी आए थे मुंगतवर जी।
अच्छा।
हम लोग ने एक स्कूल लोनावला में स्थापित की है।
सुना है।
हाँ, तो लोनावला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सबसे पुरानी स्कूल थी अम्बेडकर स्कूल, वो एकदम डिलैपिडेटेड कंडीशन में थी, क्योंकि हम लोनावला खंडाला में मेरा घर है, हम लोग जाते हैं वहाँ। तो मैंने उधर के कमिश्नर साहब को बोला कि मैं ये स्कूल बनाना चाहता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि कोई भी लोनावला कभी जाए तो उसे देखिए, लोनावला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने ही है, और वो बहुत ही अच्छी स्कूल बन गई है, और अभी वहाँ इंग्लिश मीडियम चला दिया, अभी कंप्यूटर क्लासेस कर दिए, तो छोटे से शहर में बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके अलावा मैं, एक मेरे भाई हैं, गोइनका एंड एसोसिएट्स चैरिटी ट्रस्ट चलाते हैं।
अच्छा।
हम लोग 5 स्कूल चलाते हैं, उसमें 25,000 बच्चे बच्चियाँ सब पढ़ते हैं, और वो काफ़ी मशहूर ट्रस्ट और स्कूल्स है।
तो ट्रस्ट रहता है तो ये क्या मतलब, फ्री एजुकेशन है क्या?
नहीं, फ्री नहीं है, इट्स नो प्रॉफिट नो लॉस, पेड एज पर स्टैंडर्ड्स, बट नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ जी।
हमने एक और बात सुनी है, एक बार मैं गया था, ये मराठी स्कूल्स हैं म्युनिसिपैलिटी की, तो बहुत बढ़िया बिल्डिंग थी, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, 3-4 साल पहले की बात है।
हाँ जी।
सेम मिडिल ऑफ टाउन, इतनी बढ़िया बिल्डिंग, वहाँ गया तो एकदम खाली, ओनली 1 फ्लोर वॉज वर्किंग, और वहाँ पे प्रिंसिपल मेरे को बताई कि है ना जितने मराठी क्लासेस हैं हमको मतलब स्टूडेंट्स ही नहीं मिलते अभी।
यही बात है,
जो भी होएगा, अगर हॉकर भी होएगा या कोई सर्वेंट भी कहीं का होएगा, तो वो हमको अभी मराठी मीडियम में नहीं डालते हैं। एक फ्लोर हमारा है जो इंग्लिश मीडियम है, वहीं लोग बच्चे भर्ती होते हैं, ऐसा आप भी कर रहे हैं क्या एक्सपीरियंस?
हाँ बिल्कुल, नहीं इसीलिए ये लोनावला स्कूल ये लोग इंग्लिश मीडियम कर दी। और मैं आपको एक अच्छी चीज बताना चाहता हूँ कि हमारे जो रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे है, वहाँ हम एक कार्यक्रम चलाते हैं, उसका नाम है भविष्ययान। तो ये जो भी म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं, हमने 7 म्यूनिसिपल स्कूल्स अडॉप्ट किए हैं, और वहाँ हम सब बच्चों को बिसाइड्स मराठी इंग्लिश के क्लासेस देते हैं, उनको मेंटरिंग करते हैं, उनको स्किलिंग सिखाते हैं, सो आर्ट, क्राफ्ट्स, कंप्यूटर्स, तो वो बच्चे एकदम हायर लेवल पे आ गए हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि HSC SSC में दे आर टॉपिंग नाउ, यू नो। और दूसरा हमारा रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे एजुकेशन को लेके हम लोग नाइट स्टडी सेंटर्स चलाते हैं। तो जहाँ बच्चों को स्लम्स में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, और उनके पास जगह नहीं है पढ़ने को, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, म्यूनिसिपल स्कूल की जगह ले लेते हैं शाम को 7 से 10 बजे, और उन लोग को वहाँ पढ़ने को देते हैं। आप एक दिन आएंगे तो देखेंगे, आप आश्चर्य करेंगे कि कितने उनको अच्छी सुविधा मिलती है पढ़ने के लिए।
रिसेंटली हमने यहीं पर ना नंद कुमार जी हैं, ही इज चीफ सेक्रेटरी प्रोटोकॉल, लेकिन उनका पूरा बैकग्राउंड एजुकेशन रहा है ऑल इज लाइफ, वो भी आए थे यहाँ पर।
हाँ जी।
बहुत चीजें बता रहे थे अबाउट एजुकेशन इन महाराष्ट्र।
हाँ जी।
एंड ही इज सच एन एक्सपर्ट, इनफैक्ट आपको कभी उनको मिलना चाहिए।
मैं तो खुश रहूंगा सर,
अगर आप ये चलाते हैं स्कूल्स। He's a man worth knowing.
सर हमारा ये मानना है कि अगर एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान में टॉप अच्छा हो जाए, 5 ट्रिलियन के अपन 10-20 ट्रिलियन भी पहुंच सकते हैं सर।
मन मेरा 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 लिख लिया नाम इससे तेरा 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 कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इससे तेरा
Thank you.
आपके बिजनेस के बारे में हमने पूछा नहीं, बिकॉज सब बताइए आपने तो बहुत जगह फैला रखा है, कई जगह आपके है ना, पूरे बड़े बड़े टाउनशिप्स बन रहे।
इतना नहीं है, हम 1980 से हमारा काम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का चालू हुआ, मेरे पिताजी ने शुरू किया था। हम गोरेगांव में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। अच्छा। उसके बाद में हम लोग ने मीरा रोड थाना में भयंदर में काम किया है, भयंदर में किया है, थाना में किया है, दहीसर में किया है और जुहू में किया है, और थोड़े छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स लोनावला में किए हैं। अच्छा। तो पहले जब हमने शुरुआत की थी तो 430 फुट 650 फुट ऐसे छोटे फ्लैट्स बनाते हैं, और आज भी हम 2 बेडरूम 1 बेडरूम ऐसे फ्लैट्स बनाते हैं। और मेरे को आपको ये बताते हुए खुशी होगी कि जैसे सब जगह बोलते रियल एस्टेट में मंदी है, पर ये जो 1 करोड़ का टिकट साइज है इसमें काफी डिमांड है आज भी, बट नॉट एज मच कि जितना होना चाहिए, बट सेल्स है, लोगों की तमन्ना है कि वो घर ओन करें। और रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है, हम कहते हैं कि हमेशा इट्स रियल एसेट, और हर आदमी चाहता है कि मेरा घर हो। और आप देखेंगे हिस्ट्री में तो कभी भी रियल एस्टेट का लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो प्राइस कभी कम नहीं हुआ है। एक बार जरूर 1996 से जो 2000 का पीरियड देखेंगे, 1996 to 2000, तो दाम आधे हो गए थे, पर 2000 से 2004 वो 4 गुने हो गए, 96 से देखेंगे तो एक्चुअली डबल हो गए। So, real estate has always been a rising asset, और वो हमेशा लोगों को फायदा पहुंचाया है, प्लस वो रियल एस्टेट यूज कर सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि सब लोग को जरूर रियल एस्टेट खरीदने, ऐसे कहते हैं कि ये मिलेनियम बच्चे आजकल घर लेना नहीं चाहते और रेंट करना चाहते हैं, पर एक टाइम आएगा कि अगर भाड़ा बहुत हो जाएगा तो वो कहां से चुकाएंगे। तो घर एक अपना होना ही चाहिए और सबको इसकी तमन्ना, और आजकल तो प्रधानमंत्री आवास योजना में वो लोग ब्याज का भी कटौती देते हैं, प्लस इंटरेस्ट की दर भी काफी है, 9% पे है। तो अगर आप मेरे कहने में तो सबको घर एक लेने की उम्मीद तो करनी चाहिए।
करते तो है, लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बहुत हैं। बेसिकली देखा जाए तो बॉम्बे जैसे जगह में जो बेस प्राइस ही इतना हाई है, तो एक एवरेज पर्सन हु इज अर्निंग हिज लिविंग, नॉट अ टाइकून, वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? आप कितना भी लोन दे दो, अल्टीमेटली पे बैक तो करना ही पड़ेगा ना।
ये आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि बॉम्बे का सबसे कम भाव है, सपोज 10,000 या 15,000 आप मानिए गोरेगांव मलाड या दहीसर में, वो कई शहरों में तो सबसे ऊंचा रेट है। सो पूरे आप कोई भी शहर बैंगलोर पुणे ये सब ले लो तो हम मैक्सिमम रेट 20,000 होगा, बट मुंबई में ये यही है कि साउथ बॉम्बे में 1 लाख रुपया फुट भी है और नीचे में 20,000 रुपया फुट भी है। सो मुंबई की तकलीफें अलग है।
किसी को घर एक्चुअल खरीदना हो तो क्या बॉम्बे छोड़ के चले जाए बैंगलोर?
नहीं, छोड़े क्यों, अभी मुंबई में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फैबुलस हो रहा है, 5 मेजर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट कर रही है। नंबर 1 है नया एयरपोर्ट बन रहा है, नंबर 2 ट्रांस हार्बर लिंक बन रही है, नंबर 3 मेट्रो बन रहा है, चौथा कोस्टल रोड बनेगा, 5वां बोल रहे वाटरवेज खोलेंगे। तो अगर आपका ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी हो गई मेट्रो और मेट्रो से और आप दूर जा सकते हैं, और जैसे आज 1.5 घंटा ट्रैवल करता है वो तो आधी घंटा 40 मिनट 1 घंटे में पहुंच जाएगा। और ये नहीं है कि सब लोग साउथ बॉम्बे में ही काम करते हैं, अभी कई सेंटर्स हो गए, मुंबई बहुत मुंबई हो गई है, जैसे बांद्रा में सेंटर हो गया है, अंधेरी में सेंटर हो गया है, गोरेगांव में सेंटर,
हवाई जगह जैसे जगह में भी मतलब
हाँ ईस्ट सीबीडी
बिजनेस सेंटर हो गया,
बिल्कुल। सो लोग अपने घर के आसपास 1 घंटे के ट्रैवल में आराम से आ जा सकेंगे, ये मेरा मानना है।
मतलब बॉम्बे तो अभी मतलब है ना जापान जैसा हो गया है,
बिल्कुल।
टोक्यो से 2-2 घंटा दूर जाते हैं ट्रेन से, निकलते हैं काम करके फिर बैठे जाते हैं, सो जाते हैं ट्रेन में, फिर घर पहुंचते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मतलब है ना मैक्सिमम 40 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
बिल्कुल,
बिटवीन होम एंड ऑफिस।
इट्स नॉट ओनली द टाइम, वो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए ट्रैवल की। मतलब आप अगर लटक लटक के और धक्का मार के जा रहे हैं तो वो तो बेकार चीज है। और जैसे कहते हैं एक कहावत है कि जो कौन सी देश डेवलप्ड माना जाता है, रिचेस्ट आदमी कॉमन ट्रांसपोर्ट आ सके और जाता है तो उसको डेवलपमेंट कहते हैं।
कि मैं तो मुझे याद है कि जब मैं थोड़ा छोटा था तो ट्रेन से जाता था, बिकॉज मेरे फादर जो है गाड़ी नहीं देते थे, बोलते थे नहीं तुम मैंने लोकल से ट्रैवल करो,
बिल्कुल।
ऐसा घिचपिच होता था, अभी तो मैं बरसों से नहीं गया हूँ और अरसों से नहीं गया हूँ, अभी क्या कंडीशन है लोकल्स का?
मैं भी नहीं गया हूँ, पर मुझे भी आपको कहते हुए खुशी है कि मैं भी पूरे कॉलेज समय तक जब से मैं कॉलेज पूरा किया बसों और ट्रेनों में ही घूमा हूँ। अभी तभी तो कहते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है, हाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े होपफुली तो वो उसको एड्रेस करेगा।
तो और बताइए आपके बिजनेस के बारे में।
बस हम सिंपल घर बनाते हैं सर, हम लोग दो तीन तरीके से काम करते हैं, या तो जॉइंट वेंचर्स करते हैं या लैंड ओनर के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं या हम आउटराइट जमीन करके बनाते हैं। हमारी कंपनी जो है साल में दो या तीन प्रोजेक्ट ही करती है एक समय में, तो हम लोग ओवर लेवरेजिंग नहीं करते।
हमने ये सुना है कि रियल एस्टेट में बहुत स्लंप चल रहा है, ये फैक्ट है या ऐसी बोलने की बात है लोगों की?
नहीं, ये फैक्ट भी है, क्योंकि क्या हो गया है, जो हाई प्राइस फ्लैट्स है वो नहीं बिक रहे हैं जो ज़्यादा दाम कीमत के हैं। बट दूसरी तरफ ऑल्सो क्या हुआ, पिछले साल आपको मालूम होगा कि दो तीन NBFC जो फेल हो गई वो रियल एस्टेट को काफ़ी फंड करती थी, तो इससे एक चेन रिएक्शन जैसा हो गया, तो NBFC फंडिंग बंद हो गया है बिल्डर्स को, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम आई है, बिल्डर्स प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं फंडिंग के कारण।
अच्छा,
अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हाउसिंग सेक्टर के लिए वो बहुत बड़ा पैकेज ला रहे हैं
ओके।
और लाना भी चाहिए, बिकॉज हाउसिंग इज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएटर एंड सीमेंट, स्टील एंड मेनी इंडस्ट्रीज, वेदर इट इज प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, फ्लोरिंग, विंडोज, ऑल आर डिपेंडेंट, सब निर्धारित है इनके ऊपर।
इनफैक्ट USA में तो द एंटायर इकोनॉमी का बैरोमीटर इज हाउ मेनी हाउसिंग स्टार्ट्स।
यस एग्जैक्टली,
हर महीना एक फिगर निकलता है कि ये महीना इतना हाउसिंग स्टार्ट्स हुआ, उसके बेसिस पे ही पूरी इकोनॉमी चलती है।
बराबर,
और उसी के बेसिस पे वो जज करते हैं
बराबर
इकोनॉमी कैसे चल रही है। हाउसिंग स्टार्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में वो वर्ड मैंने सुना नहीं अभी तक।
नहीं, देखिए अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का यही मानना और इनकी सपना है कि हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब हर एक का अपना घर।
कर रहे तो है ही, वो
कर ही रहे, वो हो भी जाएगा श्योर, क्योंकि जो भी वो ठान लेते वो करके दिखाते हैं।
क्यों, हम एक बिल्डर को भी जानते हैं पर्सनली, लेडी हैं वो, चलाती हैं बड़ा बिजनेस, मोस्टली इंटरनेशनली हाउसिंग करती हैं। तो उनका फ़ोन आया था कि मिलने आए, मैं बोला जरूर आइए। बोला क्या बात है, नहीं मुझे बताना है कि मुझे 500,000 हाउसिंग का नियर बॉम्बे ऑर्डर मिला है मेरे को गवर्नमेंट से। ये लेवल भी होता है क्या?
बिल्कुल। सो इसमें कहा जाता है कि अर्बन शॉर्टेज 1 करोड़ घरों की है और रूरल 1 करोड़ घरों की है। सपना है पूरा करने का,
आज शॉर्टेज है, ये
शॉर्टेज है, ये प्रधानमंत्री ट्राई कर रहे हैं पूरा करने का।
चुराए कोई सनम से, रहे कोई सौ पर्दों में डरे शर्म से, नजर भजी लाख चुराए कोई सनम से, आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।
आपका थोड़ा सा आईएमसी के बारे में कुछ और बताइए मुझे, आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि क्या क्या होता है, इतनी बड़ी संस्था है और क्या है कमिटीज
आईएमसी में। जैसे मैंने आपको कहा हमारी 32 एक्सपर्ट कमिटीज है और टॉप लोग हर एक फील्ड में, लॉयर है, लीगल कमेटी है तो मुंबई के सबसे बड़े वकील उसके चेयरमैन है, फिर अगर हमारी टैक्स कमेटी है तो उसमें सबसे बड़े जो प्रैक्टिशनर है टैक्स के वो उस कमेटी को हेड करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी है तो उसको हेड करते हैं, फिर हमारी इंटरनेशनल बिजनेस कमेटी है तो वहाँ ऐसे सब एक्सपर्ट कमेटीज़ है और ये कमेटीज़ हर महीने मिलती हैं, तो आप ये समझिए अगर 30 कमेटी हैं तो एक एक कमेटी कम से कम एक महीने में एक बार मिलती है, 30 दिन हो गए। इसके अलावा हमारी जो आईएमसी है बहुत अच्छे कार्यक्रम अपने मेंबर्स के लिए, और जो मैंने कहा हमारे डायरेक्ट जो 2500 मेंबर है और 400,000 जो एक्सटेंडेड मेंबर्स हैं उनके लिए हम लोग काफ़ी कार्यक्रम करते रहते हैं। अभी हाल ही में हम लोग ने मीट द बैंकर्स किया था, तो हमने 4 बैंकर्स को इन्वाइट किया था, HDFC, ICICI, यूनियन बैंक और उज्जैवनी बैंक, और उन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, वो बोले हम लोग लोन देने को बैठे हैं इधर बट आप लोग ही नहीं आते हो हमारे पास, कभी लेने वाला बोलता है हमको मिलता नहीं है, देने वाला बोलता है कोई लेने को नहीं आता है,
तो कोई कॉमन ग्राउंड निकालिए।
ऐसे हम अच्छे कार्यक्रम करते रहते हैं। फिर एमएसएमई की क्या प्रॉब्लम्स है, हमने माननीय मंत्री जी को भी बुलाया था अगस्त में, हम लोगों ने बड़ा कार्यक्रम किया था तो उनको सब लोगों की प्रॉब्लम्स बताई, उन्होंने हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से बताया कि क्या क्या वो कर रहे हैं। सो ऐसे बातचीत करने से बहुत चीजें मालूम पड़ती है और बहुत तकलीफों का सहल भी होता है।
ये इकोनॉमिक स्लोडाउन आप तो आईएमसी में सब कुछ जानते हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन का जो इतना सुन रहे हैं ये फैक्ट में है या सिर्फ मतलब है ना बोलने की बातें हैं?
ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है अभी, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये सब साइक्लिकल है, साइक्लिकल
मतलब
है।
मैं जानना चाहता हूँ ये बात एस आईएमसी प्रेसिडेंट।
जरूर, तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने कल ही एक हमारे मैनेजिंग कमेटी में हमारे इसके ऊपर बहुत ही बड़ा डिस्कशन हुआ और मैंने क्या पेश किया कि एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है और एक पेसिमिस्टिक व्यू है। अभी आप ऑप्टिमिस्टिक देखे जाए तो ये गवर्नमेंट अपनी बातें सब सुन रही है, बजट में उन्होंने हाल ही में 1,600,000 करोड़ रुपया 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चने को वादा किया है, प्लान किया है, फिर वो कह रहे हैं कि फिर FPI ने कंप्लेन किया तो फॉरेन पार्टिसिपेंट इन्वेस्टर्स का टैक्स कम कर दिया, फिर बैंक्स को उन्होंने मर्ज किया, ऑटोमोबाइल सेक्टर को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आपको डबल डेप्रिसिएशन मिलेगा अगर आप गाड़ी खरीदेंगे, फिर उन्होंने वो बड़ा पैकेज कॉर्पोरेट्स को दे दिया, इतना बड़ा टैक्स कट दिया ताकि कॉर्पोरेट्स और इन्वेस्टमेंट करे मैन्युफैक्चरिंग में, अगर आप अक्टूबर के आंकड़े देखें, धनतेरस के दिन कहते हैं कि 30 टन गोल्ड खरीदा गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने 7% ग्रोथ है अक्टूबर महीने का, ये मंथ टू मंथ अगर कंपेयर करें। फिर सेंसेक्स जो है अपना ऑल टाइम हाई में 40,300। फिर आप अपना फॉरेन एक्सचेंज देखिए तो 430 बिलियन ऑल टाइम हाई है। सो ये सब देखें तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव है। अभी आप नेगेटिव देखना जाए,
जीडीपी है ना 5 पे आ गया है आपसे,
तो उसका भी मैं बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए पहले अपनी जीडीपी जो थी वो खाली 1.5 बिलियन थी, तो 1.5 बिलियन से अगर आप उसको बेस करके 7% करेंगे तो उतनी हो जाती है। अभी जब आप 2.7 ट्रिलियन पे करते हैं तो उस पर 6% गिनते हैं तो 120 होता है। सो एक्चुअली एब्सोल्यूट टर्म्स में वो सेम है, बट बिकॉज बेस ज्यादा बड़ा हो गया है। ऐसे ही आप अगर कंपेयर करेंगे तो चाइना की जो 2000 में इकोनॉमी थी 2000 में वो 1.5 ट्रिलियन थी, 2008 में आप देखेंगे तो वो 6 ट्रिलियन हो गई थी, आज जाके वो 13 ट्रिलियन हो गई। तो ये सब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है और अभी सब फैक्टर्स अपने फेवर में है। सो अपने पास स्टेबल गवर्नमेंट है, अपना फॉरेन एक्सचेंज स्ट्रांग है, अपना डेमोग्राफिक्स बोलते हैं बहुत ही स्ट्रांग है अपना डेमोग्राफिक्स, क्यों ये वर्किंग पॉपुलेशन है सर, और यस तो उसका पूरा फायदा ही फायदा है।
जॉब्स हैं क्या वर्किंग पॉपुलेशन को?
सो जॉब्स क्रिएशन इज अ इशू, बट वो हो जाएगा बिकॉज जब इकोनॉमी बूम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होता है तो एम्प्लॉयमेंट भी होता ही है साथ साथ में ऑटोमेटिकली।
आखिर में हमको ये बताइए,
हाँ जी,
कि आप जैसे संस्था पे बैठे हैं,
हाँ जी,
आपको क्या लग रहा है ये अभी नेक्स्ट 3 इयर्स इंडिया के कैसा रहेगा? मतलब अभी अपने ऑलरेडी आई थिंक 6th या 5th इकोनॉमी हो गए वर्ल्ड, यही 5 साल में नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे?
बिल्कुल,
4th पे आ जाएंगे क्या?
बिल्कुल 4th नहीं, 3rd पे आ जाएंगे, 5 ट्रिलियन ही। बिल्कुल, बिकॉज यूएस जो है वो 20 ट्रिलियन है, चाइना जो है 13 ट्रिलियन है, जापान जो है 5-6 ट्रिलियन है, और अपन 2.9 ट्रिलियन है। अभी जर्मनी के बीच में 4th-5th का है तो वो तो आगे निकल जाएंगे। सो आई थिंक नंबर 3 पे तो बिल्कुल आ जाएंगे 5 ट्रिलियन पे, जिस हिसाब से मैं आपको ये सब बातें अभी बता रहा था। मुझे तो लगता है ये अपना गोल्डन पीरियड है इंडिया का।
रियली?
हाँ जी,
वेरी गुड, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू आप हमारे यहाँ आए ऑल इंडिया रेडियो के पास,
मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, थैंक यू फॉर हैविंग मी,
थैंक यू।
श्रोताओं, 100.1 MHz आकाशवाणी मुंबई के FM गोल्ड प्रसारण सेवा में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम छूलो आसमान में आशीष वैद्य, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आशीष स्टेट और प्रेसिडेंट इंडियन मर्चेंट चैम्बर से ली गई भेंट वार्ता। भेंट कर रहे थे नजारा टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन, IBG के प्रेसिडेंट फॉर द रिपब्लिक ऑफ माली के ऑनररी काउंसिल विकास मित्र सेन। अब यह कार्यक्रम समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के निर्माण में सहयोगी थी प्रीति यादव और FM गोल्ड की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। नमस्कार।